अपने तक पहुंचेंगे। हमारी संस्कृति में सार ने जो टोटल शब्द कहा, कहीं किसी का विरोध है ही नहीं, ये तो कालांतर में सब विरोध हो गया, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन आप जिस रास्ते चलते हैं उस रास्ते की जानकारी आपको है कि नहीं, आप जा कहां रहे? हर आदमी सुख ढूंढ रहा है, हर आदमी शांति ढूंढ रहा है, लेकिन उसका भी एक रास्ता होता है, तरीका होता है। आप बाजार में जाते हैं, आपको दूध लेना है तो दुकानें बहुत हैं, लेकिन आपके मन में विचार है कि दूध लाना है तो दूध की दुकान पर जाएंगे, लोहे की दुकान पर नहीं जाएंगे। पिता ने कहा, पुत्र बाजार जा, दुकान से दूध ला, और लोहे की दुकान पे पहुंच गया। कहते भाई दूध दो। कहा पिताजी ने कहा बाजार की दुकान से दूध ला, ये भी तो दुकान है, लेकिन इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि वो दूध कहाँ मिलता है। इसी तरह से सबसे पहले आप अपने को स्वीकार करें कि आप स्वयं शक्ति के पुंज हैं, आप स्वयं अपने आप के जीवन के उद्घाटक हो। अक्सर मैं आपके बीच में आता हूं, कभी आपकी फैक्ट्री का उद्घाटन किया, कभी हॉस्पिटल का किया, कभी स्कूल का किया, समय समय पर छोटी दुकानों का भी किया। जहां आप विचार कीजिए, एक हॉस्पिटल की बात लो या एक स्कूल की बात लो, आप मनीषानंद को कब बुलाते हैं या किसी को भी, तो एक उदाहरण दे रहा हूं, कभी मुख्यमंत्री आते हैं, कभी प्रधानमंत्री आते हैं, कभी राष्ट्रपति आते हैं, आप कब बुलाते हैं? जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, और उद्घाटन करने वाला 10 मिनट में उद्घाटन कर देता है। आप लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन का उद्घाटन कब होगा, तैयारी है आपकी जो उद्घाटन करूं? यार समझने की बात है, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, साल डेढ़ साल पहले किसी ने कहा महाराज जी रामकृष्ण के समीप में विवेकानंद गए, उनको तुरंत समाधि लग गई, तो आप कुछ करो। मैंने कहा आपकी तैयारी है विवेकानंद की तरह? आप हैं तैयार? चुप हो गए। हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर कमी है तो अपने में है, कहीं बाहर नहीं है। अगर यह सूरज मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाकर आंख दिखानी पड़ेगी, डॉक्टर उपचार बताएगा। सूरज निकला है, मैं उपदेश दे रहा हूं, सूरज को देखो, सूरज को देखो, देखो 10 बजा 11 बजा 12 बजा, वो कहता है मेरी दुनिया में तो अंधेरा है, आपके दुनिया में क्या बज रहा है? आप जानते हैं मैं किस आशय से कह रहा हूं। ये आपकी जो कमजोरी है, हमारे उपदेश के बाद उपचार आपको करना पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे यहां, प्रोफेसर हैं, सब हैं। हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें दवा दी और हम लगे उसकी आरती करने। आरती करने का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मंदिर जाने का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उपचार है, डॉक्टर ने दवा बता दी भाई ये दवा खाओ आपकी कमजोरी दूर होगी, तो नियम पूर्वक उस दवा का सेवन आपको करना पड़ेगा। जैसे जिसकी आंख में मोतिया बिंद है उसे लाख सूरज के विषय में बताऊं, लेकिन जब तक उपचार नहीं करूंगा तब तक सूरज के विषय में माहिती होगी, बाकी कोई दर्शन होने वाला नहीं है। आप चाहते हैं परम शक्ति का दर्शन, मेरे प्रिय आत्मन, एक आंख की कमजोरी से प्रकाश होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे हैं, तो अंदर का परमात्मा जो आपके अंदर बैठा है उसे देखने के लिए भी अंदर से कितनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। वो तैयारी क्या है? हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप तैयार हैं तो हमारी उपनिषदें कह रही हैं, जितनी देर में गाय का बाछड़ा आंचल से दूध पीता है उसके आधे समय में भी आप परमात्मा की कृपा गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो तैयारी जो है, तैयारी चाहिए। अब वो तैयारी की थोड़ी बात करूंगा। आप स्कूल में मुझे बुलाते, कितनी तैयारी करते? कई स्कूल में गया, तीन तीन साल तक स्कूल की बिल्डिंग बनाया, उसका डेकोरेशन किया, कारपेट बिछाया, कितनी तैयारी की। और फिर कभी मंत्री बुलाए कि मनीषानंद बुलाए कि राष्ट्रपति बुलाए, तब आप बुलाते हैं। और यहां तो भगवान को बुला रहे हैं, शायद आता भी होगा लेकिन तैयारी न देख के वापस जाता होगा कि लोग कैसे। मुराद जी के विषय में आप जानते हैं, कहीं की बात है, वो उस शहर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमारे शहर का अपमान करते हैं। बहुत समय के पंक्चुअल थे, उनको कार्यक्रम में बुलाया गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो लोग सोचते हैं जो पहले चार घंटे लेट आते हैं तो ये भी दो घंटे लेट आएंगे। समय पर पहुंच गए, कुछ भी तैयारी नहीं, तो वापस आए, पता चला मुराद जी आए, वो आकर चले गए। अरे ये प्रमाणिक आदमी मुराद जी तैयारी न देख वापस चला गया, तो जो सबको प्रमाण पत्र देता है बिना तैयारी के कैसे आएगा? आएगा तो लौट के चला जाएगा। मुराद जी बहुत इंटरनेशनल फिगर हैं, बहुत प्रमाणिक हैं। मैं पॉलिटिकल बात नहीं, मैं व्यक्ति के तौर पे कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल बात है, हमारे लिए तो पॉलिटिकल कोई बात ही नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर। और भी लोग हैं, मुराद जी की प्रशंसा में मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे अनुभूति है वो बता रहा हूं। एक बार मुझे किसी ने कहा, स्वामी जी आप इस रास्ते गुजरते तो आप घर पे आ जाना। घर पे पहुंचे, अक्षर अभी मैं नहीं जाता है, करीब 25 साल पहले की बात है। घर पर पहुंचे तो सिगरेट पी रहे थे, विदेशी सिगरेट था, छोड़ भी नहीं सकते थे, फेंक भी नहीं सकते, तो हालत खराब हो गई। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मैंने कहा ठीक है, मैं जानता हूं विदेशी, वो बाहर का सिगरेट था, नाम वगैरह नहीं बताता। तो जा विचार कीजिए, आपने मुझे बुलाया और आप परेशान हो गए। मैंने कहा अब तो कोई विधि से बुलाएगा तभी जाऊंगा, क्योंकि किसी के घर अचानक जाकर परेशान नहीं करना है, उससे छोड़ भी नहीं सकता और फेंक भी नहीं सकता। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, लेकिन आज आपको बता रहा हूं, स्वामी जी आप इधर से गए, घर क्यों नहीं आए? आप अंबा जी की पूजा करके आए और पत्नी को डांट रहे हो, तो मैं किसकी पूजा करूं, आपकी करूं कि अंबा जी की करूं? एक बात कहता हूं, तो अक्सर मुझे कहता है, पहले लोग मुझे क्या मानते थे कि मनीषानंद बड़ा अहंकारी है। एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी लोग आपको बहुत अहंकारी मानते हैं, भड़का आपने कहा तो आज मुझे पता चला, बताइए क्या अहंकार है मैं निकालूं? आपने कहा तो ठीक कहा होगा। कहे कहते स्वामी जी इधर से जाते हैं, हम प्रणाम करते तो हाथ भी नहीं उठाते, घर भी नहीं आते। तो मैंने कहा मैं आंख बंद करके सब में परमात्मा देखता हूं, किसके 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 हाथ को देखूं, और ये वृत्ति खराब हो जाएगी तो कभी आपके हाथ में बोतल हो तो आप क्या करोगे? कह स्वामी ठीक, मैं किसी की तरफ नहीं दे रहा, हमारे साथ अम्बालाल साहब जाते हैं, कमल सिंह जाते हैं, अपने कांदी पूछिए कांदीलाल से। एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी आप किसी के यहां पानी क्यों नहीं पीते? अब है ना हमारे साथ कमल सिंह है, मास्टर आप दिन में जितना लंबा प्रोग्राम करो जून में, यहाँ से एक गिलास पानी पी के जाता हूँ फिर यहीं आके पीता। कहते हैं नहीं स्वामी जी आप वैज्ञानिक होकर के अंधविश्वासी हो। मैंने कहा मैं इतने आनंद में रहता हूँ कि पानी पीने की जगह ही नहीं रहती। आप तो इतने तनाव में हो इसलिए बार बार पानी पीना पड़ता है, भजिया खानी पड़ती है और पड़ोसी का मगज भी खाना पड़ता है। एक बात कह रहा हूं, पूछिए कांति भाई बैठे का मास्टर कमल सिंह बैठे हैं कि गर्मी के महीने में भी क्यों मैं आनंद में रहता हूं। नहीं स्वामी जी लोग ऐसा मानते हैं। मैंने कहा क्या कैसे अहंकारी हूं? कहते किसी ने कहा प्रणाम किया स्वामी जी देखे नहीं, तो मैंने कहा आप जब गांव में लेटर बॉक्स में पत्र भेजते हो और इंग्लैंड अमेरिका बंबई पहुंच जाता है तो आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रणाम करो, वो मेरे तक पहुंच जाएगा, हाथ हिलाने की जरूरत नहीं। ये वृत्ति खराब, मैं आपसे भी कहता हूं अगर अपनी वृत्ति को ठीक करना है तो यहां जो संस्कृत पढ़े लिखे प्रमाण विपर्य विकल निद्रा, अपने को देखो तुम स्वयं प्रमाण हो। किसी ने पूछा सूरज का क्या प्रमाण है? सूरज कहता है अरे मेरे मैं सारी दुनिया को प्रकाश देता हूं और मुझसे मेरा प्रमाण मांगा जा रहा है। आप इतने लायक हो कि आपका वचन ही आपका प्रमाण है। एक बार किसी ने मुझसे कहा नास्तिक आदमी ने कि स्वामी जी गीता पर कृष्ण ने हस्ताक्षर किया जो आप विश्वास करते हो। मैंने कहा हस्ताक्षर वालों का तो मैं आज तक विश्वास ही नहीं किया। कुछ ढंग से पूछे थे। अरे मैं किसको मानता हूं, किसमें श्रद्धा है इसलिए विश्वास करता हूं, बाकी आपके हस्ताक्षर पर भी मुझे विश्वास नहीं। भांग पी के किया हो तो रोज आप मंदिर जा रहे हो, बड़े प्यार से कहता तेरा तुझको सौंपू क्या लागे मेरा, रोज कहते हो तेरा तुझको सौंपू क्या लागे मेरा, और आपका नया जूता कोई ले गया कहते गुरु जी अनाउंस कर दो कि मेरा जूता कोई ले गया। तेरा तुझको सौंपू क्या लागे मेरा, और 500 रुपए जूते के लिए परेशान, न प्रवचन ठीक लगता है न लपसी ठीक लगती है, कौन ले गया होगा कौन ले गया होगा। और मनीषानंद कहते हैं आपके पास है, मैं भगवान से कहता हूं रोज आपका जूता जाए और रोज नया जूता लाओ, इतनी शक्ति भगवान है। आप में कमी क्या है? जो अभाव वाला होगा ले जाएगा। हम किसी का जूता न चुराए, चुराना है तो संतों का वचन चुराओ। संतों का वचन चुराने से ऊंचे उठोगे और जूता चुराने से जेल में जाओगे। चुराओ, ये मेरे विचार है। आप में कमी क्या है? आप केवल महसूस कर रहे हैं, जस्ट टू फील दैट यू आर लाइकिंग। आप महसूस करते हैं बस, वही जो महसूस कर रहे हैं विचार कर रहे हैं बस वही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। थोड़े दिन पहले हैदराबाद में हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि अनुशक्ति से प्रबल शक्ति विचार शक्ति है, तो कई बार मैं प्रवचन में बोल चुका हूं। तो ये कहे कहे स्वामी जी आपकी बात बिल्कुल सच लगती है। मैंने कहा क्यों? कहा राष्ट्रपति भी बोला हैदराबाद में कि अनुशक्ति से बड़ी ही प्रबल शक्ति विचार शक्ति है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरी बात प्रमाणित हो गई। मैं राष्ट्रपति का आदर करता हूं, लेकिन आज आपका राष्ट्रपति पूरा जगत पूरे वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये हिंदू साहब ने हिंदू की बात की, बात सही आ रही है उनकी बात है। अब वो सब बातें मैं उठाना नहीं चाहता। आर का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचार, और श्रेष्ठ विचार को कालांतर में ही एक धारा में बदला गया जिसे आर के नाम से जाना गया और देश गुलाम हुआ तो हिंदू हुआ। आज अगर मैं हिंदू शब्द भी कहूं व्यवहार में आ गया है तो हिंदू शब्द जाति पांति का नहीं विचारधारा का नाम है। जो सत्य बोले प्रेम करे सबका आदर करे। अब आप बताइए हिंदू लोग सत्य मानते हैं तो क्या इतर जाति का तो झूठ बोलो? हिंदू सत्य बोलता है तो तुम झूठ बोलो? मैं तो सबको मानता हूं लेकिन जहां सत्य बोलता हूं। मैं किसी जाति पांति खंडन नहीं करता। मैं अपने सिद्धांत का अच्छी तरह से पालन करता हूं, बताता हूं, और इस पालन में किसी खंडन हो जाए तो जानबूझ के नहीं करता। कितने लोग मेरे पास आए, एक ही उदाहरण आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे। कोई आए इतर जाति, उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे यहां ऐसा है, आपके यहां ऐसा है, दोनों में सत्य क्या है? मैंने कहा ये संस्कार आपको जन्म के बाद मिला। आप जा बताइए, जन्म जब आप थे छोटे बच्चे आपको मालूम था कि पाप क्या, पुण्य क्या, अमावस क्या, पूनम क्या, चोर और बदमाश कौन, साहूकार कौन? कहे नहीं, धीरे धीरे आपके अंदर ये संस्कार डाला गया और वही आज विरोध बनकर के प्रकट हो रहा है। और इसकी थोड़ी वैज्ञानिक पद्धति बताऊंगा। कितने लोग मेरे से पूछ चुके हैं स्वामी जी ऐसा क्यों, इस पर थोड़ी बात कर लूं फिर जो कहना चाहता हूं कहूं। अनाद काल से जब से आप जन्मे, मैं, मेरा पिता, उनका पिता, उनका पिता, उनका पिता, किसी समय का इतिहास उठाकर आप देखें, दोनों परबल हमेशा रहे। आज आपका पूरा विज्ञान जगत मानता है, संभव है कि रामायण और महाभारत काल्पनिक हो, लेकिन आपका विज्ञान कह रहा है कल्पना का आधार भी सत्य है। मैं वैज्ञानिक दृष्टि से कहता हूं, राम का समय लो, कृष्ण का समय लो, कोई भी समय लो, बुद्ध का लो, महावीर का लो, जीसस क्राइस्ट का लो, किसी का समय लो, दो परिबल हमेशा रहे, एक राम का, एक रावण का, एक कृष्ण का, एक कंस का, हमारी आपकी भाषा में शुभ और अशुभ। अगर पूनम है तो अमावस भी है, सुबह है तो शाम भी है, और शाम है तो सुबह भी है। जगत का इतिहास उठा के देखें तो हमेशा दो परिबल रहे। आज वैज्ञानिक मान गए रामायण के आधार पर, अच्छे आदमियों के सामने समस्याएं आएंगी। राम की बात ले लो, लेकिन आगे विज्ञान और एक अच्छी बात कर रहा है। अब अच्छी तरह वो कल्पना मान रहे हैं, लेकिन कल्पना का आधार भी सत्य है, ये आप समझें। यहां जितने बैठे सब जिम्मेदार हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, पंजाब से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, बंबई से, पूना से, नरोली से, सिलवास से, बाकी हमारा गुजरात तो है ही, सब अच्छे अच्छे इसमें ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आप सब जिम्मेदार हैं। अब राम को एक जिम्मेदारी में लीजिए, राम की क्या जिम्मेदारी है? प्रथम सोपान से शुरू करूंगा, आप में परमात्मा है, लेकिन आप परमात्मा की तरह जी रहे हैं। परमात्मा के कई अर्थ हैं, एक अर्थ है कि परमात्मा सबको सुख देता है। एक नास्तिक आदमी आके पूछा, स्वामी जी मैं परमात्मा नहीं मानता। मैंने कहा आप किसको मानते हो? कहा मैं नेचर मानता हूं। तो बताइए नेचर सुख देती है कि नहीं, सूरज सुख देता है कि नहीं, चांद सुख देता है कि नहीं? हमारे यहां कहा गया जो सुख दे वही परमात्मा, हमारी माँ हमें सुख देती है, हमारे पिता हमें सुख देते हैं, हमारा मित्र हमें सुख देता है, जो हमें सुख दे, सही रास्ते पे ले चले, हमारी निर्बलता को दूर करे और हमारी बुराई को छिपा करके हमें अच्छा बनाए, वही माता पिता गुरु हमारे भगवान हैं। का स्वामी जी आपने बड़ी अच्छी बात बताया, आप शब्दों से लड़ रहे हैं, आप हकीकत को नहीं समझ रहे हैं, सत को नहीं समझ रहे हैं, आपकी कमजोरी को जो दूर करे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी किसको गुरु बनाऊं? मैंने कहा कलर पर मत जाओ, दाढ़ी मूछ पर मत जाओ, उम्र पर मत जाओ, कोई हिमालय में रहता है कोई मत जाओ, जिसके पास बैठने से आपकी तन और मन की कमजोरी दूर है हो जाए, वही आपका परमात्मा है, वही आपका गुरु। एक पुरानी बात है, अच्छे अच्छे ऑफिसर मुझे जानते हैं, आप लोग जानते हैं, कोई आया कहे स्वामी जी मेरे साहब आपके यहां आते हैं, मैंने कहा आते हैं, कहा उस साहब को देखकर मैं आया, मैंने कहा साहब रिटायर्ड हो गए तो आप नहीं आएंगे, क्या उधार जिंदगी जी रहे हो? किसी को सीधे पहचानो, उधार मत पहचानो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। परमात्मा को भी सीधे, अरुण घोष ने बहुत सुंदर कहा है, अगर मैं सीधे उससे संबंध स्थापित कर सकता हूं तो मेरे से विचार लेकर तुम भी सीधे स्थापित करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा विचार ही तुम्हारे परमात्मा के बीच में दीवार बन जाए। आज देख रहा हूं कितनी ऊंची बात है, मेरे पास लोग आते हैं, महाराज नाम नहीं लेता, बड़े बड़े अच्छे संतों के नाम लेते हैं, फलाना संत ऐसा कहता है, फलाना ऐसा कहता है, फलाना ऐसा कहता है, आप ऐसा कहते हो, तो मैंने कहा मैं कहता हूं कि लड़के को बड़ौदा में एडमिशन दिलाओ, कोई कहता है राजकोट में, कोई कहता है दिल्ली में, कोई कहता है कि बंबई में, ये निर्णय मुझे करना है कि आपको करना है। बातें सबकी ठीक हैं, लेकिन निर्णय आपको करना है। विचार उधार ले लो, लेकिन निर्णय कभी उधार ना लेना। ठीक लगे ये मनीषा नंद की बात भी आपको ठीक लगे कि मेरा जीवन ऊपर जा रहा है तो स्वीकार करना, नहीं तो महाभारत का पितामह द्रोणाचार्य मामा को भी किसने इनकार कर दिया कि अर्जुन इन रिश्तों को भी स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, कहां अमंद विश्वासी है, मामा कितना पूज्य होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी कितने पूज्य हैं, पितामह कितने पूज्य हैं, लेकिन हमारा जगत गुरु कृष्ण कहता है इनको मत स्वीकार करो, क्योंकि ये सत्य जानते हुए भी सत्य के पक्ष में नहीं है। इतनी बड़ी बात किस समाज में जा बोलिए तो सही, कैसे आप कहते हो कि हमारा समाज अंधविश्वास का है? लेकिन ये 150 वर्ष में हमें बहुत गड़बड़ किया गया, गुलाम बनाने के लिए मानसिक रूप से भी गुलाम बनाया गया, हर तरह से बनाया गया, और वही अंदर की गुलामी खत्म करनी है। जा विचार करो, एक बड़ी छोटी सी कहानी सुना दूं। राजा की कुर्सी पर संजोग से गुलाम बैठ गया, एक कहानी है मनोवैज्ञानिक, राजा की कुर्सी पर संजोग से एक गुलाम बैठ गया कि भाई राजा की कुर्सी कैसे होती है, मंत्री ने देख लिया और राजा से शिकायत की, राजा कहते तेरी इतनी हिम्मत हुई, तेरी इतनी हिम्मत हुई मेरे सिंहासन पर बैठा, तो वो थोड़ा समझदार था, हंसने लगा, राजा कहता है तू क्यों हंसता है, कहा मालिक की कुर्सी पर बैठने से आप इतना डांटते हो तो जो जगत का मालिक है उसकी कुर्सी पर बैठकर आप अपने को कुछ मान रहे हो हिरण्यकश्यप की तरह, तो आपको कितनी फटकार लगेगी। अब इस बात को बदलिए जरा, गुलाम इसको जरा समझिए मानसिक रूप से, गुलाम जब सिंहासन पर बैठा तो डांट खाया, और राजकुमार जब बैठा तब, हमारी संस्कृति आपको राजकुमार बनाती है, गुलाम नहीं बनाते, और ये 150 वर्ष में गुलाम बनाया गया, इसलिए फटकार इंसान कर रहे। ये कहानी का मर्म समझो, गुलाम मालिक के गोद में नहीं बैठ सकता लेकिन पुत्र बैठ सकता है, तो हम लोग भगवान के पुत्र हैं, उसकी जगह हमें गुलाम बना दिया गया। मैं हाथ जोड़ कहता हूं मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, राम का समय लो, कृष्ण का समय लो। मैं कुछ मनोवैज्ञानिक बात करना चाहता हूं, ये भाव की बात है, इसका मैं निराकरण करूंगा, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक बात बताऊंगा। राम कृष्ण या हम साधु संत हैं, आप देखिए हमारे नाम के साथ कहीं दास शब्द नहीं है, है आजकल, लेकिन मैं विचार करता पुराने जो नाम है। अब विज्ञान कह रहा है कि भारतीय लोग इतने भगवान के पुत्र होते हुए लेकिन अपने को दास मानने लगे, और आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, इसलिए 150 वर्ष तक गुलाम रहा। ये वैज्ञानिकों की बात है, अब मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। आप रामदास हैं, जा विचार करो, दास भाव से हनुमान जी भी हैं, कितनी शक्ति प्राप्त हुई। अगर सचमुच आप राम के दास हैं तो राम को सेतु बनाना पड़ेगा, और आप राम का नाम लेकर के समुद्र पार कर जाओगे। लेकिन आप तो दास किसी जगत के बन गए, कैसे? एक हंसी की बात है, हे राम मेरी लगन नहीं होती, भगवान का हो जाएगी। कुंभ का मेला आया, पत्नी को लेकर कुंभ मेले में गया, पत्नी गायब हो गई, राम के पास पहुंचा, कहा प्रभु आपकी कृपा से लगन हुई लेकिन साधुओं के कुंभ मेले में गायब हो गई। कहा वहां एक हनुमान जी है, उनसे जाके पूछ, खोज निकालेंगे, चिंता मत कर। एक हंसी की बात है, हर एक व्यवस्था है। दास बनना है तो हनुमान जी की तरह बनो ना, कितनी शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन हम तो क्या, लगन हो गई तो राम को माने, नहीं हुई तो कहते काहे राम। हम तो जगत के दास बने, हम पास हो गए तो राम की आरती करेंगे, नहीं पास हो गए तो कहते काहे का राम। इसलिए जा सोचिए, मैं दास शब्द का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन दास का उपयोग किस तरह किया गया उस पद्धति का खंडन कर रहा हूं। दास को तो कितना प्यार किया है राम ने, लेकिन कितना समर्पण है। कहीं कोई, अभी एक बात बता दो, समर्पण की बात, और इसमें साधना भी नहीं था, जहां विचार करो, कालांतर में राम ने हनुमान से पूछा, बिना मेरी आज्ञा के, दास है ना, बिना आज्ञा के एक काम नहीं करना चाहिए, एक सेवक का धर्म है। वहां धर्म की बात राम ने की, लेकिन जहां हनुमान जी को उत्तर देखिए, ये समझने की बात। राम कहते हैं, हनुमान बिना मेरी आज्ञा के तू कोई काम नहीं करता, तो मेरे से आज्ञा क्यों नहीं ली लंका जलाने के लिए? सेवक धर्म कहता है कि मुझसे पूछना चाहिए था। कहा ठीक है प्रभु जी, मां सीता आपके अर्धांगिनी है, आप तो वहां थे नहीं, मैंने मां से पूछा, मुझे भूख लगी है, तो मां कहती है बेटा जितनी भूख लगे जाके खा ले, अभी मैं आपसे कहूंगा जितनी भूख है कहीं जाके खा लो, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं एक ही फल खाया था तो राक्षस हाहाकार करने लगे, मेरा पेट भी नहीं भरा, मैं कहां बिगाड़ रहा था, मां की आज्ञा का पालन किया, आपकी अर्धांगिनी है, मैं मां से पूछे बिना जाता तो पाप करता, आपकी अनुपस्थिति में मां ने कहा जाओ जितनी भूख लगे खा लो। फिर राक्षस लोग प्रहार करने लगे, आखिर मैं आपका दास हूं, प्रहार का जवाब तो देना चाहिए। फिर ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र में मैंने आपका स्वरूप देखा, आप बताइए मैं ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकता था कि नहीं? कहा तोड़ सकते थे, तो आपका आदर किया कि नहीं? कि जहां आपका स्वरूप है कुछ हो जाएगा, दास का काम है किसी भी तरह मालिक का विरोध करना नहीं। आजा देखिए, चाहता तो मैं तोड़ सकता था, कहे हाँ, लेकिन क्यों नहीं, उसमें आपका स्वरूप था। फिर मैं सहज बन गया कि जहां आपका स्वरूप मुझे बांधे हुए है, क्या कराना चाहता है आप बताइए, मेरी बात ठीक है कि नहीं? ये लोग मुझे बांध के ले जा सकते थे? कहा नहीं। क्यों गया? सहज था। देखिए क्या क्या होता है। फिर मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटे, मैं चाहता तो लपेट सकते थे? कहा नहीं। क्यों? उसने आग लगाए। अब आप ये बताइए, जब मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, आग लगाई गई, और मेरे मन में कोई विचार नहीं था, तो उस समय किसका विचार काम करता है? जिस समय दास के मन में कोई विचार नहीं हो, फिर भी कोई घटना घटती है, तो कौन कराता है? कहते मैं कराता हूं। तो आप कैसे कहते हो कि मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली? ये कहानी समझो, यही बात बाइबल में आई है। सर्वसंतमान पढ़िए, कोई क्रिश्चियन आपका दोस्तों पूछिए, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मेक दाई एम्प्टी आई शैल फिल दी। हे शिशु, अपने को खाली करो, विचार शून्य बन जाओ, विचार शून्य होते ही मैं उसमें आ जाऊंगा, प्रकाश आ जाएगा। वही बात हनुमान जी की। उस समय मेरे पास कोई विचार नहीं था, मैं सहज था। और प्रभु जी आप बताइए, जब हमारे अंदर कोई विचार नहीं होता, उस समय कौन काम करता है? कहते मैं करता हूं। ये गीता में भी यही है, तू मेरी शरण में आए, अब विचार शून्य हो जा, अब अगर मगर मत कर, अब जो मैं कहता हूं कर, ये मैं तेरे द्वारा कर रहा हूं, तू निमित्त है, इसका प्रमाण है। आप महाभारत पढ़िए, अंतिम अर्जुन रथ पर से उतर जा, कहता है आप रथी हैं, मैं महारथी हूं। पहले रथी को उतरना चाहे, फिर महारथी को। भगवान किस कहते हैं, अर्जुन अगर इन सब नियमों का पालन करना करता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। आज भी चुका रहा हूं वो मान, तूने कहा था जो आप कहोगे करूंगा, तो आज ये संकल्प क्यों उठ गया? समझने की बात है, आप जो कहोगे करूंगा तो ये क्यों कह रहा है कि पहले मैं उतरूं, फिर ये विचार क्यों आया? मैं कहता हूं कि नीचे उतर। अर्जुन नीचे उतरता है, जो लोग अच्छी तरह महाभारत जानते हैं वो समझेंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण उतरे और खाक हो गया रथ, जल गया। फिर अर्जुन को भ्रम गया, अगर कृष्ण पहले उतर जाते तो रथ के साथ मेरा भी। फिर पता चला, प्रभु आप जब सारथी बनते हैं, कहते कुछ नहीं, लेकिन किस किस तरह लोगों को बचाते। यही अर्जुन ने जब समर्पित किया तो भगवान ने जो कहा किए। ये आपका शुभ विचार, आपका भगवान है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, महाराज जी मैं कैसे समझूं कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं कि शैतान का? जब भी किसी भी तरह किसी को दुख पहुंचाने की बात आए तो समझ लो कि शैतान काम कर रहा है। राम को मैंने शुरू में कहा परमात्मा, राम स्वयं दुख उठाए सबको सुख दिया, शैतान रावण अपने सुख के लिए सबको दुख दिया। ये दो परबल हमेशा रहेंगे, एक राम का एक रावण का। हम आप जो जिम्मेदार आदमी हैं, 100 बरस तक जो यहां आए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते समय कर्तव्य का पालन करें। आप मिलिट्री में हैं तो उस समय कोई भी देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा, युद्ध करना आपका धर्म है। अगर हमारा प्रभु हमारा कृष्ण नाच सकता है तो सुदर्शन भी चला सकता है, और अर्जुन को उपदेश देता है कि भजन करने के लिए पलायनवादी न बन, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। युद्ध आपका कर्तव्य, नहीं तो मैं कहूंगा युद्ध कर तो घर में जाके पड़ोसी से लड़ने लगोगे। स्वामी जी ने कहा युद्ध करो, क्योंकि मैंने कहा पड़ोसी, अरे कौन सा पड़ोसी, देश की बात कर रहा हूं, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, मुश्किल हो जाएगा। कोई भी हो, जहां देश की बात आएगी उसको समझो। अब यही अगर आप समझ लें तो जीवन में, जैसा कि आपको बताया कि अक्सर आपका जो प्रश्न है उद्घाटन का, बड़े प्यार से कहता हूं, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक ही विवेकानंद मिले, अरुण घोष के जीवन में एक माताजी मिले, यही मैं कहता हूं। एक भी व्यक्ति तैयार होगा तो देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पात्र ही टूटा फूटा होगा तो सैनी का दूध कैसे रुकेगा। परमात्मा सब कुछ दे रहा है हमारे आपके माध्यम से, हर पिता चाहता है मेरा पुत्र बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन कारण क्या है कि वो बड़ा नहीं बन पाता, कमी पुत्र की है पिता की नहीं। पिता की तो पूरी तैयारी है, आप मेडिकल में जाएंगे जरूरत पड़ेगी 10 लाख का डोनेशन पिता देगा, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं तो पिता क्या करेगा। इस तरह परम पिता सब कुछ हमें आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी आपकी तैयारी चाहिए। मेरे प्रिय आत्मन, पहली तैयारी, मैं बाद में व्यवहार की बात कर दूंगा, पहली तैयारी है कि एक एक घर से शुरू करो, अपने परिवार से। कुछ भी हो जाए, पिता पुत्र की बात हो, पति पत्नी की बात हो, गुरु शिष्य की बात हो, भाई भाई की बात हो, एक एक सोचो मेरे कारण घर में कोई तकलीफ न उठाए। पति भी यही सोचे, पत्नी सोचे, पुत्र सोचे, पिता सोचे, तकलीफ किसको होगी। तकलीफ तब होती है हम आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं अपने सुख के लिए, और उसी आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं। पिता कहता है पुत्र मेरे पास आ, कहता पिताजी आप मेरे पास आइए, नहीं, उसकी मर्यादाएं बनी है। एक जीवन है, पुत्र को ही पिता के पास जाना चाहिए, छोटे भाई को ही बड़े भाई के पास जाना चाहिए, गुरु को शिष्य के पास जाना चाहिए। मर्यादा इसीलिए बनी है कि कभी मानसिक संघर्ष न पैदा हो। हमारे जीवन में कई प्रसंग ऐसे आए जब मैंने लोगों से कहा आप अपनी मर्यादा का पालन करो, सामने वाला करेगा, और मैं इसमें सफल हुआ, काफी सफल हुआ। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया, गले लगा लिया। आपकी अपनी क्या मर्यादा है? तो सबसे पहले अपनी मर्यादा में रह के सोचो कि मेरे पिता, मेरा पड़ोसी, मेरे द्वारा कोई दुखी ना हो। भले मैं किसी को सुखी ना कर सकूं, लेकिन मेरे कारण कोई दुखी ना हो, ऐसा एक विचार लाओ, अपने अंदर एक परिवर्तन लाओ। जिसे हम अहिंसा की बात करते हैं, हमने आपसे कहा कि किसी को गाली मत दो, तो आपकी जिह्वा की हिंसा तो गई। आप किसी को गाली नहीं देते, लेकिन उसके सामने ऐसा हलन चलन न करें कि उसको गुस्सा आ जाए। ये टोटल की बात कर रहा हूं। एक आपको एक गुरु वशिष्ठ की बात सुना दूं आपको, फिर समझाता हूं। गुरु ने कहा बेटा, उस समय हम लोग भिक्षा मांग करके लाते थे आश्रम में, उस समय की बात है, गुरु ने शिष्य से कहा बेटा रोज रसगुल्ला लाता है, मुझे लगता है एक ही दुकान से लाता है, वो भगत होगा। कहे हाँ गुरुदेव। कहा बेटा एक जगह से मत ला, नहीं तो आसक्ति बढ़ेगी और तू दुखी हो जाएगा। तो बेटा आज उस दुकान पे जाना है? कहा कल मैंने कहा था आऊंगा। अच्छा बेटा आज जाना दुकान पे, लेकिन रसगुल्ला मांगना नहीं, तू मांगता होगा। कहा कहता हूं भाई रसगुल्ला अच्छा हो तो दो। एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो बेटा आज मांगना नहीं, फिर भी रसगुल्ला आया। कहे बेटा तू मेरा योग्य शिष्य है, मैंने कहा था कि रसगुल्ला मांगना नहीं, फिर भी तू लाया। कहा मांगा कहा, इशारा किया था, बोला नहीं था। आज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, किसी भी तरह जो मैं बताना चाहता हूं फिर सब बताऊंगा। राम ने किसी को तकलीफ दी जिसे आज परमात्मा, आप भी वही स्वरूप हो परमात्मा जितने बैठे हो। किसने किसी को तकलीफ दी, मैं क्या बताना चाहता हूं धीरे बताता हूं। विचारों का प्रभाव कितना है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया। मैं आपकी शक्ति को बचाना चाहता हूं और बचा करके किसी बड़ी शक्ति के निर्माण में लगाना चाहता हूं। आपको क्रोध आया, आप वैज्ञानिक हैं तो सुनिए, 10 मिनट का क्रोध 3 घंटे की ऊर्जा खत्म कर देता। ये 10 मिनट का क्रोध जिस पर किया है उसका तो सत्यानाश हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा आपका हो रहा है। आपके मन में वासना आई, कितना सत्यानाश हो रहा है। जा सोचो तो सही, बुद्धि दुर्योधन के पास भी थी, बुद्धि रावण के पास भी थी, शिशुपाल के पास थी, लेकिन इनका क्रोध, इनकी वासना सत्यानाश कर दिया। रावण कोई मामूली शक्ति वाला था? आज पूरा विज्ञान कह रहा है शिशुपाल में कोई मामूली शक्ति थी, क्रोध में बोल रहा है। और हमारे भगवान कृष्ण वैज्ञानिकों की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक है। तेरी माँ को मैंने कहा था कि 100 गालियां माफ करूंगा, देख अभी 50 हुई, फिर 60 हुई, फिर 70 हुई। ऐसे भगवान सोचते कहीं बीच में थक के रुक न जाए, इसको बार बार याद दिलाओ। और मनोविज्ञान क्या कहता है, क्रोध में 100 गालियां तक उसकी शक्ति इतनी नष्ट हो जाती है कि उसको मारने में फिर कोई ताकत लगानी नहीं पड़ती। ये मनोविज्ञान कह रहा है। आज मनोवैज्ञानिक कृष्ण महान वैज्ञानिक, महान आध्यात्मिक। अगर आपको क्रोध आया तो सत्यानाश किसका होगा, या सोचो तो सही। एक डॉक्टर कूपर हुए, उन्होंने कुछ लिखा, जल गया, कोई अफसोस नहीं हुआ। लोग पूछते आपकी मेहनत बेकार गई, कहा भाई ये पूरा करने के बाद सोच रहा था कि आगे क्या करूं, मुझे 2 साल का काम और भगवान ने दे दिया, अभी 2 साल तक फिर से लिखूंगा, मेरा माइंड है अभी मैं। या सोचो तो सही, न्यूटन तक की बात आती है, जो होना था हो गया, लेकिन जो बचा उसको संभालने के लिए भी आपका सहज रहना बहुत जरूरी है। कल जो हो गया सो हो गया, ये भी वैज्ञानिक कह रहे हैं। किसी ने आपको गाली दी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो गाली सीखने के लिए कहीं ट्रेनिंग स्कूल में जाना पड़ता है? तो बिना ट्रेनिंग के जो कुछ हुआ है वो तो एनिमल किंगडम है, वो तो पशुता है। आप इतने पढ़ लिख करके देवता बन करके और इतने नीचे उतर गए, उसके पास जो होगा वही देगा ना। छोटी छोटी बातों में आपका मन बंट गया है, वो शक्ति जो है कहां खर्च हो रही है। तो आज वैज्ञानिक भी कहते हैं जो होना था हो गया, लेकिन जो बचा है उसको संभालो, और उसको संभालने के लिए आपका हर तरह से सहज होना, ठीक होना बहुत ही जरूरी है। अब बता रहा हूं, उद्घाटन मेरे से कराना चाहते हो, आज उद्घाटन करना चाहता हूं। बहुत हॉस्पिटल का, बहुत स्कूल का, बहुत फैक्ट्री का उद्घाटन किया।